रेडियो मानव रचना 107.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और आप है मेरे साथ यानी दीक्षा के साथ और वक्त है कुछ खास बातें करने का आप ही की सेहत के बारे में। हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कब किस किस जीवन में आ जाए कोई नहीं जानता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैंसर की। कैंसर एक जानलेवा और खतरनाक बीमारी है, लेकिन समय पर अगर इसका इलाज कर लिया जाए, इसे सही समय पर पकड़ लिया जाए, तो आप कैंसर से अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं, यानी आप कैंसर से लड़ सकते हैं, अपनी जिंदगी को आसानी से जी सकते हैं। लेकिन कैंसर है क्या? कैंसर से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, सीनियर फिजिशियन फ्रॉम ओल्ड फरीदाबाद, डॉक्टर के मिश्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
रेडियो मानव रचना के अपने सभी श्रोताओं का अभिवादन और नमस्कार। साथियों, आप पिछले कुछ एपिसोड्स में हेल्थ रिलेटेड विषय सुनते रहे हैं। आपने डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एंजाइना और टीबी जैसे बीमारियों के बारे में सुना है और जाना है, लेकिन आज जो विषय हम आपसे डिस्कस करेंगे वो एक ऐसी बीमारी है जिस पर अभी तक बहुत अच्छे से काबू नहीं पाया जा सका है। इस बीमारी में कुछ सहयोग हमें आपसे भी चाहिए एक मरीज की हैसियत से। अगर दीक्षा, एक पेशेंट हमारे पास समय पर आए
जी,
उसके शरीर में एक छोटी सी गांठ है जो उसको दर्द नहीं कर रही है, उसको कोई नुकसान भी नहीं दे रही है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। अगर वो समय रहते अपने डॉक्टर के यहाँ चला जाए, या एक छोटी सी खांसी जो उसको काफी दिनों से है, मान लीजिए एक महीने से उसको थोड़ी थोड़ी खांसी है,
गला बैठा है,
उसके गले में खराश है, या लोकल लैंग्वेज में उसको ठसका बोला जाता है। एक ठसका शायद आपको कोई तकलीफ नहीं देता है, आप ऑफिस भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, लेकिन वो ठसका क्यों है? आप अपने डॉक्टर के पास अगर जाएंगे और आपके डॉक्टर साहब एक एक्सरे कराएंगे तो उसमें पाएंगे कि एक छोटी सी गांठ सांस की नली में उभर रही है। अगर वो पेशेंट उसी वक्त इलाज करवा लेता है तो वो आने वाले लंग कैंसर से बच जाएगा
जी।
तो देखो, मेडिकल एजुकेशन का या अवेयरनेस का कितना बड़ा रोल है इसमें। अगर मरीज सही समय पर आ जाए
जी,
तो डॉक्टर साहब भी आपकी हेल्प करके और आपको एक बेहद बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं।
बिल्कुल।
आज के इस प्रोग्राम का जो हेल्थ अवेयरनेस का इंटेंशन है दीक्षा, कि मैं अपने साथियों को, अपने श्रोताओं को ये समझाना चाहूँगा कि अगर आपके शरीर पर एक छोटा सा मस्सा है जो चुपचाप बैठा हुआ है, अभी तक इतने बरसों से, 40 साल से वो मस्सा आपके कंधे पर था और आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन आज वो बढ़ने लगा है, उसमें खुजली होने लगी है, उसमें से कभी कभी ब्लड आने लगा है, ठीक है, रोज नहीं आता है, वो आपको कोई कष्ट भी नहीं दे रहा है, आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं है तो कभी कभी ब्लड आ जाता है, ऐसा नहीं है साथियों। वो मस्सा कैंसर के चेंजेस से पास हो रहा है और आने वाले महीनों में, अगले साल भर में उस जगह एक गांठ बन जाएगी
जी।
मेरा मकसद आप लोगों को यही समझाना है कि अगर कैंसर का पेशेंट समय रहते अपने डॉक्टर के पास चला जाता है, उस मस्से को उसी समय उस जगह जड़ से निकाल दिया जाएगा और वो कैंसर स्प्रेड नहीं हो पाएगा, अन्यथा वो धीरे धीरे एक मकड़ी के जाल की तरह, एक ऑक्टोपस के पैर की तरह शरीर में चमड़ी के नीचे 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 बहलता चला जाएगा और मालूम पड़ेगा कि वो मस्सा जितना ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको आइसबर्ग फिनोमिना कहते हैं दीक्षा, ऊपर 1/3 टिप दिखाई देती है और 2/3 कैंसर स्किन के नीचे फैला हुआ है।
जी जी।
तो डॉक्टर साहब कितना शोल्डर निकाल देंगे आपका, ऐसे तो पूरा हाथ ही निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर हम समय रहते आ जाएं तो छोटा सा वो मस्सा निकाल दिया जाएगा
जी, जी।
और आप कैंसर से बच सकेंगे।
बिल्कुल।
आज की इस लेक्चर का निवेदन आप लोगों से यही है कि थोड़ी सी हेल्थ अवेयरनेस, अ चेंज इन योर वॉइस पैटर्न, अ चेंज इन योर बॉवल हैबिट्स, जिस पेशेंट को हमेशा नॉर्मल मोशन होता था उसको आज कब्जी रहने लगी है। अब देखो, इसका कोई बड़ा अहमियत नहीं है, तमाम लोग सोचेंगे मैंने तो ये खा लिया था इसलिए कब्जी हो गई, या मैंने वो पी लिया था इसलिए कब्जी हो गई, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अगर अंतड़ी में एक छोटा सा बॉयल क्रिएट हो रहा है, रसौली बन रही है, या एक छोटा सा ट्यूमर ग्रो कर रहा है
जी,
तो इंटेस्टाइन का पहला लक्षण तो यही होगा, या तो वो कॉन्स्टिपेट हो जाएगी या उसको डायरिया हो जाएगा। तो एनी चेंज इन योर बॉवल हैबिट्स शुड अलार्म यू टू गो टू द डॉक्टर। ये एक लक्षण है साथियों कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, एक अल्ट्रासाउंड कराएं और आपको आश्चर्य होगा कि आपके अंतड़ी में एक छोटी सी रसौली निकल आती है जो कि उसी वक्त ऑपरेट होकर आपको एक बड़े कैंसर से, बड़े गांठ से, बड़ी रसौली से बचा सकता है।
जी,
कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर पेशेंट अवेयर है, एजुकेटेड है, समझदार है और वक्त रहते अपने डॉक्टर के यहाँ चला जाता है तो वो बहुत बड़ी बीमारियों से बच सकता है।
बिल्कुल, कैंसर के बारे में बहुत सी बातें कर रहे हैं तो सर अभी फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत से श्रोता आपको सुन रहे हैं, कैंसर एक्चुअली में है क्या? आपने कहा एक गांठ है जो कि थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है लेकिन नीचे काफी ज्यादा फैली होती है, मकड़ी की जाल की तरह ये और ज्यादा फैलती चली जाती है, लेकिन ये आखिर गांठ बनती कैसे है?
इसके लिए साथियों हमें थोड़ी सी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी कि इंसान की जो बनावट होती है वो कैसे होती है। एक छोटा सा बच्चा जो माँ के पेट में पल रहा है उसके अंदर जो बॉडी बड़ी होती है, बच्चा जो बड़ा होता है, उस प्रोसेस को दीक्षा माइटोसिस बोला जाता है। माइटोसिस वो प्रक्रिया है जिसे एक सेल दो में, दो आठ में, आठ सोलह में, बत्तीस में और इस तरह से एक मसल जो छोटी सी मसल एक बच्चे में होती है वो 20 साल तक आते आते माइटोसिस की प्रक्रिया से बड़ी होती जाती है। और ये कुदरत का करिश्मा कहूँगा मैं इसे कि माइटोसिस एक लेवल पर आकर रुक जाती है। जैसे मेरे बाएं हाथ की ये उंगली है ये एक लेवल तक बढ़ेगी, मान लीजिए 2.5 इंच की हुई
जी, जी।
और मेरे दाहिने हाथ की भी वही उंगली भी 2.5 इंच की होगी
जी,
और ये कुदरत का कमाल देखो दीक्षा कि वो 2.5 इंच पर आकर रुक जाएगी
जी।
अब ये उसे कौन रोक देता है? इस प्रोसेस को माइटोसिस बोला जाता है कि वो बराबर बराबर ग्रो होता है, मेरा एक हाथ दूसरे हाथ के बराबर है। कभी भी तुमने ये नहीं देखा होगा कि एक आदमी का एक हाथ लंबा है और एक हाथ छोटा है, ऐसा बहुत कम होता है। इसको माइटोसिस बोलते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग। किसी किसी अनफॉर्चुनेट पेशेंट में माइटोसिस की प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती है, वो ग्रोथ रुकती नहीं है, वो मस्सा जो छोटा सा होके रुक जाना चाहिए था, फर्दर ग्रो नहीं होना चाहिए था, कुछ माइटोसिस की प्रक्रिया में गड़बड़ होने की वजह से ग्रो करता चला जाता है
जी।
अब उसी मस्से को हम रसौली बोलने लगेंगे और बड़ा हो जाएगा तो हम उसको ट्यूमर का नाम दे देंगे, बिकॉज इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ये है प्रोसेस कैंसर का
जी।
कैंसर एक ऐसा टिश्यू है जो रुकता नहीं है, उसको वहीं रुक जाना चाहिए था। गले की एक मसल है जो एक लेवल तक ग्रो होती है और फिर उसको रुक जाना चाहिए, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो गांठ का रूप लेती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और सांस की नली को जिसको उसको सपोर्ट करना चाहिए था उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने लगती है, उस पेशेंट को सांस लेने में या खाना खाने में तकलीफ होने लगी, इसको कैंसर कहा जाता है
जी। जी,
सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ माइटोसिस विच इज अनकंट्रोल्ड, तो वो धीरे धीरे वो हिस्सा गांठ बनने लगता है
जी। जी,
इसको कैंसर कहते हैं
जी। जी, यानी शरीर में कहीं पर भी गांठ है तो उसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिलहाल डॉक्टर मिश्रा मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैंसर की बात चल रही है और बहुत कम लोग जानते हैं कि कैंसर शरीर के किन किन भागों में हो सकता है, कहाँ कहाँ कैंसर हो सकता है एक्चुअली में। अक्सर हमने जो मोटे तौर पर सुना है या तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुना है या ओरल कैंसर के बारे में सुना है, ये कुछ ऐसे कैंसर है जिनके बारे में फिर भी अवेयरनेस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रकार के कैंसर है जिनके बारे में आम जनता नहीं जानती, तो मैं चाहूंगी कि आप उन टाइप्स ऑफ कैंसर पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
इस सवाल का जवाब मैं दीक्षा दो भागों में दूंगा, मेल कैंसर्स और फीमेल कैंसर्स
जी।
अगर हम फीमेल कैंसर की बात पहले करें तो नंबर वन ऑफकोर्स ब्रेस्ट कैंसर आता है और बच्चेदानी का कैंसर यूटराइन कैंसर आता है
जी।
ये दो ऐसे कैंसर हैं जो फीमेल्स में बहुत कॉमन है
जी।
लेकिन अगर मैं मेल की बात करूं, आपको आश्चर्य होगा श्रोताओं जान के कि मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है
जी।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल में ही ब्रेस्ट होता है, मेल में भी ब्रेस्ट होता है। ये ठीक है कि फीमेल्स में 30-40% ज़्यादा कैंसर होता है
जी।
लेकिन मेल ब्रेस्ट में भी कैंसर होता है
जी।
और मेल्स हमारे यहाँ चूंकि स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या तम्बाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं तो मेल्स में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर्स होते हैं, मुंह के कैंसर्स। आपको साथियों मैं एक सुपारी का उदाहरण दूंगा। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग खैनी या सुपारी सारे दिन चबाते रहते हैं, स्पेशली जो लेबर क्लास है, काम जी करता रहता है और मुंह में खैनी या तम्बाकू खाता रहता है। ये सुपारी या तम्बाकू दीक्षा जब हमारे टंग को या गम को या मुंह के अंदर के हिस्से को इरिटेट करती है तो उस जगह की चमड़ी धीरे धीरे मोटी होती जाती है
जी।
और वर्षों के सुपारी के उपयोग से उस मोटी चमड़ी में एक रसौली बन जाती है। दिस इज नोन एज क्रॉनिक इरिटेशन, इरिटेशन ऑफ द टंग, इरिटेशन ऑफ द गम, इरिटेशन ऑफ द माउथ, अल्टीमेटली लीड्स टू माउथ कैंसर्स
जी।
इसी तरह आदमियों में जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनको लंग कैंसर बहुत होता है
जी।
मेल्स में लंग कैंसर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, इट मेक्स अबाउट 20% ऑफ द मेल पॉपुलेशन, जहाँ पर लंग कैंसर्स बहुत होते हैं क्योंकि वो लोग धुएं में काम करते हैं, ईंट भट्टा रोड़ी का काम करते हैं, धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू ज़्यादा खाते हैं, तो लंग कैंसर्स आर मोर कॉमन इन द मेल पॉपुलेशन। इसी तरह से जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, ये भी यहाँ पर भी मेल डोमिनेंस होता है, उनको लिवर का कैंसर होता है। लिवर के कैंसर का पहला लक्षण पीलिया होता है। अगर आप में से किसी को भी पीलिया हुआ है साथियों, तो अपने कुछ टेस्ट, अपना एक अल्ट्रासाउंड, अपने लिवर के टेस्ट ज़रूर कराइए। कैंसर ऑफ द लिवर ऑलवेज शोज बाई जॉन्डिस, पीलिया जिसको कहा जाता है
जी।
इसी तरह एक कोलन कैंसर होता है, ये भी आदमियों में ज़्यादा होता है दीक्षा। जो लोग बहुत ज़्यादा मसाला खाते हैं, मिर्च मसाला खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं या कच्चा अनपका अधकूका खाना खाते हैं, उनको अंतड़ी में एक ज़ख्म हो जाता है जिसमें से धीरे धीरे खून रिसने लगता है। क्योंकि हमें वो ज़ख्म दिखाई नहीं देता है इसलिए बरसों गुजर जाते हैं और वो ज़ख्म का कोई इलाज ही नहीं होता है। अंततोगत्वा वो जख्म कैंसर में परिवर्तित हो जाता है, इसको कोलन कैंसर बोलते हैं। वैसे इस कोलन कैंसर में औरतों और आदमियों का एवरेज बराबर बराबर है, 50% आदमियों में होता है और 50% लेडीज में होता है। तो देखो, फीमेल कैंसर्स ऑफ द ब्रेस्ट एंड यूट्रस, मेल कैंसर्स ऑफ द माउथ, ऑफ द थ्रोट, ऑफ द लंग एंड ऑफ द लिवर, and 50-50 ratio of colon cancers in males and females. तो इस तरह से देखो कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। लेकिन जब पेशेंट पहले दिन आता है दीक्षा, इसीलिए उससे पूछा जाता है कि भाई आप क्या काम करते हो। अगर उसने कहा कि मैं एक धुएं की चिमनी में काम करता हूँ, तो डॉक्टर का ध्यान तुरंत जाएगा कि मुझे इसके चेस्ट का एक्सरे होना है, इसके लंग कैंसर को ध्यान में रखना है और इसके गले का, लिवर का, थ्रोट का इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करना है। तो अपने डॉक्टर के पास जब भी जाएं साथियों, उनको सही सही बात, सही हिस्ट्री और अपने बारे में पूरी जानकारी अवश्य दें, तभी जाकर आपके डॉक्टर साहब आपके बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और आपके सही टेस्ट लिख सकेंगे। डॉक्टर जो है पेशेंट की उम्र के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से, उसके व्यवसाय के हिसाब से अपने इन्वेस्टिगेशंस लिखता है और अगर उसको सही जानकारी ना दी जाए
जी,
तो शायद वो डॉक्टर आपके बारे में सही टेस्ट ना करा सके
जी।
आप अगली बार जब भी अपने डॉक्टर साहब के यहाँ जाएं, अपने व्यवसाय के बारे में, अपनी उम्र के बारे में और अपनी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो डॉक्टर साहब से छुपाइए नहीं, उन्हें ऑनेस्टली बताइए
जी,
मैं रोज 2 पैग्स पीता हूं, ताकि डॉक्टर साहब आपके लिवर का टेस्ट जरूर कराएं
जी। बिल्कुल, यानी ये कैंसर अलग अलग प्रकार के आपने बताए हैं, तो साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शरीर के और किन बदलावों को हम कैंसर के रूप में देख सकते हैं, यानी कौन से ऐसे वार्निंग सिग्नल्स होते हैं जो कैंसर की तरफ इशारा करते हैं।
ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है दीक्षा, और इसका जवाब मैं यूं दूंगा कि जैसे अभी मैंने एक खांसी का उदाहरण आपको दिया था कि अगर कोई भी खांसी है जो आपको तंग कर रही है और 1-2 महीने से जा नहीं रही है, आपका ख्याल ज़रूर जाना चाहिए कि मेरे सांस की नली में कोई ना कोई ऐसा चेंज हो रहा है जिसके बारे में मुझे या तो एक्सरे कराने चाहिए या अपने कुछ टेस्ट कराने चाहिए। एक मैंने मस्से का भी आपको उदाहरण दिया
जी, जी, जी.
कि वो मस्सा जो 20 साल से 30 साल से आपके शरीर पर है और अभी तक चुपचाप बैठा हुआ था और अब उसमें कुछ चेंजेस आने लग गए हैं, तो आपको अपने मस्से को अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए
जी, जी.
अंतड़ी के बारे में मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर आपको पहले कब्जी रहती थी और अब डायरिया होने लग गया है, या पहले डायरिया रहता था और अब कॉन्स्टिपेशन रहने लग गया, तो आपको अपने लीवर के बारे में या कोलन कैंसर के बारे में जरूर टेस्ट कराना चाहिए
जी जी.
इसी तरह मैं एक खून का उदाहरण दूंगा दीक्षा. कई लोगों में खून अपने आप कम होता चला जाता है. मरीज कह रहा है कि मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ, मैं तो सब खाना खाता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन मेरा हीमोग्लोबिन जो कि पहले 14 था अब 12 हो गया है, 10 हो गया है, 8 हो गया है. इसका मतलब है उसको ब्लड के कैंसर की अवस्था हो सकती है. और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आपके डॉक्टर साहब इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि एनीमिया एंड ल्यूकीमिया
जी,
ल्यूकीमिया के टेस्ट जरूर कराए जाए
जी.
आपको हैरत होगी दीक्षा जान के कि ल्यूकीमिया के टेस्ट 100-200 रुपए में हो जाता है
जी.
एक सिंपल ब्लड टेस्ट कैन टेल अस अबाउट ल्यूकीमिया. सिर्फ ये है कि लोगों को जानकारी नहीं है, और आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को यही जानकारी देना चाहता हूँ, यही अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ
जी,
कि 200 रुपए का एक छोटा सा टेस्ट हमें एनीमिया, ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया
जी,
ये तीन ग्रेड्स होते हैं ब्लड कैंसर्स के, इतना छोटा सा टेस्ट हमें इतनी बड़ी जानकारी देता है
जी. बिल्कुल.
तो जिन महिलाओं में, जिन बहनों में, जिन लेडीज में खून की कमी हो रही है या बार बार खून कम हो जाता है, उन्हें ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए. और ये आपके डॉक्टर साहब आपको तुरंत बताएंगे कि खून की कमी क्यों हो रही है
जी. जी
तो देखो, खून की कमी इट्सेल्फ एक मैनिफेस्टेशन है कैंसर का. एक खांसी जो कि 15 दिन से अधिक है, मैनिफेस्टेशन है कैंसर का. डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेशन, कैंसर ऑफ द इंटेस्टाइन. अ मोल दैट इज स्टार्टेड टू ग्रो विच इज पेनलेस इन नेचर, उसमें दर्द नहीं होता है. पेशेंट क्लासिकली ये कहता है कि साहब मुझे दर्द नहीं है इस मस्से में, बस ये बड़ा होता जा रहा है. इमीडिएटली थिंक ऑफ कैंसर. इसी तरह से कुछ चेंजेस होते हैं जो हमारी आवाज में आने लगते हैं
जी. जी
वो पेशेंट कहता है कि साहब मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है
जी,
बस मेरी आवाज भर्राती जा रही है, बैठती जा रही है
जी. जी और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है उनका गला बात करते करते बैठ जाता है,
बैठ
फिर
जाता
थोड़ी
है.
देर बाद बैठ जाता है.
अब वो लोगों को चूंकि कोई तकलीफ नहीं है, वो सोचते हैं कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है डॉक्टर के यहाँ जाने की. लेकिन दीक्षा देखो, ये शुरुआत है थ्रोट कैंसर की
जी.
एक एक्सपीरियंस डॉक्टर तुरंत समझ जाएगा कि इसके लैरिंग्स में, थ्रोट में, वॉइस बॉक्स में कोई ना कोई चेंज हो रहा है, तभी इसकी आवाज भर्रा रही है, बैठ रही है
जी.
या इसको गले में खराश रहती है. तो आप में से जिन साथियों को भी गले में खराश है, छोटी सी खांसी है, या जैसा मैंने अभी ठसके के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे मरीज मैं देखता हूँ दीक्षा, जिनको ठसका रहता है. वो कहते हैं हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ठसका क्यों है, मुझे और आपको तो नहीं है, आपको ही क्यों हो रहा है साहब? आप अपना एक्सरे कराइए, आप देखिएगा कि आपके सांस की नली में एक छोटी सी रसौली है. अब वो कैंसर है या नॉन कैंसर है ये एक अलग बात है
जी.
लेकिन अपना एक्सरे जरूर कराइए, जो कि मात्र 200 रुपए में हो जाता है
जी. जी
तो आप घबराइए नहीं साथियों, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो जरूर कोई ना कोई इसमें से आपका काम निकालेंगे
जी.
इसी तरह से मैं अपनी महिलाओं को एक विशेष बात बताना चाहूँगा दीक्षा, कि जिन लेडीज को पीरियड्स ठीक नहीं होते हैं, उनको कई बार एक महीने में 3 बार पीरियड्स हो जाते हैं
जी.
अब बहुत सारी लेडीज शर्म के मारे नहीं जाती हैं डॉक्टर के, उनको बताने में हिचक होती है. कई लेडीज जानती नहीं है इसलिए नहीं जाती हैं, और कई लेडीज इसलिए नहीं जाती हैं कि पता नहीं डॉक्टर साहब क्या बता देंगे, तो चलने दो जैसा चल रहा है
जी. जी बिल्कुल.
लेकिन बच्चेदानी की कैंसर का पहला लक्षण इरेगुलर मेंसेस है
जी.
तो अगर कोई लेडी इरेगुलर मेंसेस या ओवर ब्लीडिंग से सफर कर रही है, उसको अपने लेडी डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, बच्चेदानी का एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, अपने खून की जांच करानी चाहिए. और ये बीमारियां, ये टेस्ट आपको आगे आने वाली बहुत बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं।
जी बिल्कुल, यानी सही समय पर अपने शरीर में कोई भी बदलाव देखें तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। फिलहाल बहुत सी बातें और भी जारी हैं और डॉक्टर मिश्रा, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैंसर अगर डायग्नोज हो जाता है, अगर किसी प्रकार से किसी को भी कैंसर डायग्नोज हो गया है, तो आखिर इस बीमारी से लड़ा कैसे जाए? क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही दिल घबराता है और अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि अब कैंसर हो गया तो समझो जिंदगी खत्म हो गई।
नहीं, ऐसा नहीं है दीक्षा। अपने प्रबुद्ध श्रोताओं को, अपने अच्छे श्रोताओं को मैं ये बताना चाहूँगा साथियों कि अगर कैंसर स्टेज वन पे डायग्नोज हो जाए, अगर आप लोग तुरंत और समय रहते अपने डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, या मैंने अभी जैसा मस्से वाला उदाहरण दिया दीक्षा, अगर छोटे से मस्से में कुछ चेंजेस हैं और पेशेंट उसी वक्त अपने डॉक्टर के यहाँ जा रहा है
जी,
वो डॉक्टर साहब उसको उस एरिया को निकाल देंगे, मस्से को निकाल दिया जाएगा। या अगर मान लीजिए उंगली के टिप पर कैंसर का चेंज आ रहा है, उतनी सी उंगली काट दी जाएगी, निकाल दिया जाएगा और आपका जीवन बच जाएगा
जी।
दिस इज स्टेज वन ऑफ कैंसर
जी।
आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है, मेरे आने का यहाँ मकसद भी यही है कि मैं आप लोगों को ये आगाह कर सकूँ साथियों कि अगर आप समय रहते अपने डॉक्टर पे जाते हैं। एक लेडी का उदाहरण देता हूँ दीक्षा कि अगर उसके ब्रेस्ट में एक छोटी सी रसौली है, छोटी सी गांठ है, और वो वक्त रहते अपने डॉक्टर से मिल लेती है, वो डॉक्टर साहब या तो उतने लंप को निकाल देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रेस्ट को निकाल देंगे। एक 40 साल की लेडी है, मेरे ख्याल से उसके बाद उसको ब्रेस्ट का इतना यूज नहीं होता है, और अगर एक ब्रेस्ट निकाल कर हम उसके जीवन को बचा लेते हैं तो इसमें कोई हर्जा नहीं
जी।
तो जिन महिलाओं को अपने ब्रेस्ट में कोई रसौली या गांठ दिखाई देती है या पैल्पेट होती है, उसको छू कर देख सकते हैं
जी जी,
श्रोताओं को, महिलाओं को ये मैं बताना चाहूँगा कि महीने में एक बार इन लोगों को मिरर के सामने खड़ा होना चाहिए दीक्षा, अपने अपर गारमेंट्स हटा दें, ब्लाउज उतार दें और अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट करके देखें, छू कर देखें
जी
कि आपके ब्रेस्ट के टेंडरनेस में, ब्रेस्ट के बनावट में कोई फर्क तो नहीं आ रहा है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इस समय हम बिल्कुल टेक्निकल और साइंटिफिक बात कर रहे हैं
बिल्कुल,
कि कॉन्टूर ऑफ द ब्रेस्ट एंड द टेक्सचर ऑफ द ब्रेस्ट, उसकी बनावट में और उसकी सॉफ्टनेस में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। कोई भी महिला ये देख सकती है अपने मिरर में खड़े होके, अपने बाथरूम में उसको पैल्पेट कर सकती है, या अगर उसको कोई रसौली या गांठ या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ नज़र आती है तो उसको तुरंत अपने लेडी डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। अगर उसी लेवल पर पेशेंट चला जाए ग्रेड वन में, सर्जरी इज द बेस्ट आंसर फॉर कैंसर
जी।
ये एक स्थिति हो गई। कई बार क्या होता है कि पेशेंट हिचक करता है, शर्म करता है, अनभिज्ञ है, नहीं जा पाता है, और हम देखते हैं कि वो जो गांठ छोटी सी ब्रेस्ट में थी वो फैल कर बगल में चली गई है
जी।
अब ऐसे केसेस में दीक्षा हमें सर्जरी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा रेडिएशन करना पड़ेगा। रेडिएशन एक एक्सरे जैसा यंत्र होता है जिसमें इंफ्रा रेड एंड अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं
जी।
ये रेज उस कैंसर के सेल्स को जला देती है। जो कैंसर होता है ये एक मकड़ी की तरह स्प्रेड करता है
जी,
ऊपर ऊपर गांठ होती है और नीचे इसके पैर फैलते चले जाते हैं। तो जो रेडिएट हो जाता है, अब हम बॉडी का कितना हिस्सा निकालेंगे, तो ब्रेस्ट को निकाल दिया जाता है और थोड़ा सा रेडिएशन कर दिया जाता है ताकि चारों तरफ जो कैंसर फैला है वो सेल्स जला दिए जाते हैं
जी।
सो दिस इज नोन एज रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। तो पहला स्टेज सर्जरी हो गया, सेकेंड स्टेज रेडिएशन थेरेपी हो गया, और कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स ऐसे भी हैं दीक्षा जिनमें कैंसर बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, वो खून में चला गया है और खून के माध्यम से पैर में, हाथ में और बॉडी में सब जगह स्प्रेड हो गया है। तो अब ऐसे केसेस में आप रेडिएशन सब जगह तो नहीं दे सकते हैं
जी जी।
तो फिर तीसरा तरीका निकाला गया है, उसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। कीमोथेरेपी में कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ग्लूकोज के माध्यम से ब्लड में चढ़ाई जाती हैं, बूंद 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 बूंद, 2400 घंटे वो कीमोथेरेपी उसको दी जाती है, 24 घंटे में या 48 घंटे में एक बॉटल चढ़ाया जाता है। उसके ज़रिए से ये होता है कि जो कैंसर के सेल्स ब्लड में स्प्रेड हो गए हैं
जी जी,
कीमोथेरेपी से उन पर काबू किया जाता है। और एक कॉम्प्लिकेटेड केस में शायद थोड़ी सी सर्जरी भी इन्वॉल्व होती है, थोड़ी सी रेडियोथेरेपी भी इन्वॉल्व होती है और थोड़ी सी कीमोथेरेपी भी इन्वॉल्व होती है।
जी जी,
तब जाकर 70-80% मरीज अच्छे हो जाते हैं।
जी जी,
लेकिन फिर इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और मैं अपने श्रोताओं को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिनको रेडिएशन थेरेपी दी जाती है या कैंसर थेरेपी में कीमोथेरेपी दी जाती है, कई बार उनके बाल झड़ जाते हैं
जी,
उनका रंग काला पड़ जाता है, उनकी ब्लड में कमी हो जाती है
जी, वीकनेस आ जाती है,
या जब कैंसर के सेल्स मारे जाते हैं दीक्षा, तो वो साथ साथ में नॉर्मल सेल्स को भी मार देते हैं, ब्लड सेल्स
जी, जी।
तो उसका फिर ये तरीका होता है कि उसको 5 यूनिट ब्लड अलग से चढ़ाया जाता है, पहले उसको रेडिएट कर दो 15-20 दिन, और जब उसका ब्लड का लेवल ड्रॉप हो जाए तो उसको फिर ब्लड चढ़ा दिया जाता है
जी।
दिस इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन पोस्ट रेडिएशन
जी।
ये तरीके हैं कैंसर को इलाज करने
जी, यानी ये तरीके जो हैं ये कैंसर को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कैंसर होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से चला रहे हैं, सही ट्रीटमेंट लेने के बाद अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। तो डॉक्टर मिश्रा, बहुत कुछ आपने बताया, आपने ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि कैंसर का ट्रीटमेंट अलग अलग स्टेजेस में होता है, थोड़ा सा टफ है लेकिन फिर भी पेशेंट की जान को आसानी से बचाया जा सकता है, और अगर जितनी जल्दी कैंसर को डायग्नोस कर लिया जाए उतना आसान होता है ट्रीटमेंट। तो अभी फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी कि कैंसर की फील्ड में काफ़ी सारी नई नई रिसर्च की जा रही है, तो अभी हाल ही में कुछ रिसर्च ऐसी हुई है जिनसे लोगों को और ज़्यादा फायदा मिल सके?
आजकल कैंसर पे बहुत सारा काम हो रहा है हर देश में, और हमारे देश में भी बहुत सारा काम कैंसर रिसर्च पर किया जा रहा है। आजकल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है दीक्षा, उसमें ऐसा सोचा जा रहा है कि अगर पेशेंट की इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस, बीमारी से लड़ने की शक्ति को बढ़ाया जाए, यहाँ पर मैं एक उदाहरण दूंगा, एक उस लेडी का जिसको सफ़ेद पानी की शिकायत है या ल्यूकोरिया की शिकायत है, उसको हर दिन सफ़ेद पानी जाता रहता है और धीरे धीरे उसके बच्चेदानी पर कैंसर के चेंजेस होने लगते हैं। अब अगर इस लेडी का इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस बढ़ा दिया जाए या बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ाई जाए, उसका खून बढ़ाया जाए, हीमोग्लोबिन बढ़ाया जाए, उसका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ाया जाए, तो शायद उसका शरीर बेहतर तैयार होता है कैंसर के सेल से लड़ने का
जी।
आजकल ऐसा भी माना जा रहा है कि जब माइटोसिस की प्रक्रिया से हमारे शरीर में हजारों सेल्स रोज बनते हैं, उनमें से कुछ सेल्स कैंसर सेल्स के भी बनते हैं, वो बनने नहीं चाहिए, लेकिन जिस शरीर में 10,000 सेल्स रोज बन रहे हैं और कुछ हजार सेल्स रोज मर रहे हैं, वहाँ पर कुछ एबनॉर्मल सेल्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, और अगर मरीज की प्रतिरोधक शक्ति अच्छी है तो उसकी बॉडी उन एबनॉर्मल सेल्स को मार देगी
जी।
या जो ल्यूकोरिया वाली लेडी है जिसके यूट्रस के माउथ पे कुछ चेंजेस डेवलप हो रहे हैं, अगर उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा है तो वो उन सेल्स को या उन चेंजेस को वहीं मार देगी
जी।
बॉडी फाइट्स ऑन इट्स ओन
जी,
बट फॉर दैट यू नीड गुड हेल्थ। हमें अपनी सेहत जरूर अच्छी रखनी चाहिए, हमें समय पे भोजन खाना चाहिए, अच्छा भोजन खाना चाहिए, एक फल, एक दूध, एक दाल और 2 रोटी, ये हमें ज़रूर खानी चाहिए। मेरे जो युवा वर्ग के साथी हैं जो आजकल फास्ट फूड्स ज़्यादा खाते हैं, जो बर्गर और पिज़्ज़ा और मोमोज ज़्यादा खाते हैं, मेरे साथियों, इन सब में मैदा होता है, ये आपके शरीर में खून नहीं बना सकते हैं। हमारे शरीर में अगर खून बनना है तो वो पालक, गाजर, टमाटर, हरी सब्जी से बनेगा, और यही वो चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी स्टेटस को बढ़ाएंगी, और जब आप लोग 40 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, तब आपकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाएंगी
जी।
तो अगर आप लेटर लाइफ में स्वस्थ रहना चाहते हैं, उसकी शुरुआत दीक्षा आज होगी।
बिल्कुल,
जो व्यक्ति आज से ही बीमार है या जिसको अभी से ल्यूकोरिया है, जिसको अभी से खांसी है, वो 50 साल पे जाकर उसको कोई ना कोई कैंसर या कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी ज़रूर होगी
जी।
तो जिन साथियों को अपना लेटर लाइफ अच्छा रखना है, उनको अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी चाहिए, उसका तरीका यही है कि एक विटामिन, एक प्रोटीन, एक कार्बोहाइड्रेट उनको ज़रूर खाना चाहिए
जी।
मेरी युवा वर्ग की पीढ़ी जो मुझे सुन रही है, उनको मेरा मैसेज भी यही है साथियों, कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, एक नियामत है ईश्वर ने हमें एक बार दिया है। आप लोग साथियों मोबाइल सेट्स खरीद सकते हैं, मोटरसाइकिल्स खरीद सकते हैं, मकान और कार और गाड़ी रोज खरीद सकते हैं, लेकिन दीक्षा आई साइट की कोई दुकान नहीं है
जी।
मेमोरी बाजारों में नहीं मिलती है। हैप्पीनेस, नींद और भूख ये किसी भी शोरूम में नहीं बिकता है।
बिल्कुल।
बड़े बड़े मॉल्स हैं जो आपको पिज्जा और बर्गर और मैगी तो खिला देंगे, लेकिन भूख कहाँ से लाओगे साथियों? नींद कहीं बाजार में बिकती नहीं है। आज आपको नींद आ रही है और आप उसका ख्याल नहीं कर रहे हैं, 60 साल पर जब आपको नींद नहीं आएगी तब आप इस बात को सोचेंगे कि हमने अपने युवा अवस्था में इसका ख्याल नहीं किया। तो मैं अपने तजुर्बे से आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि अपनी आई साइट, अपनी मेमोरी, अपनी स्माइल, अपनी खुशी अपने हाथों से ख़राब ना करें। अपने छोटे छोटे प्रिकॉशंस रखें ताकि हम उम्र के साथ में अपनी लेटर लाइफ में खुश रह सकें।
जी, बहुत बहुत आपने खास बातें बताई हैं और बहुत सी ऐसी बातें आपने लाइव एग्जांपल्स के साथ जोड़कर बताई हैं हमारे श्रोताओं को, जिनसे वो काफ़ी अच्छे से समझ सकें कि उनके जीवन का सही मूल्य क्या है। डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया कैंसर के बारे में इतनी सारी और बहुत ज़्यादा बहुमूल्य जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।
दीक्षा, अभी हम अगले कार्यक्रम में शायद ऑर्गन वाइज कैंसर का डिस्कशन कर सकते हैं।
जी जी,
कैंसर ऑफ द लंग, कैंसर ऑफ द थ्रोट, कैंसर ऑफ द माउथ, कैंसर ऑफ द यूट्रस
जी।
और आने वाले समय में आप और मैं मिलकर अपने युवा वर्ग की और सेवा करेंगे ताकि युवाओं में वो जागृति आए, वो समझ आए कि ये जो शरीर भगवान ने हमें एक बार दिया है ये वो गिफ्ट है, वो नियामत है जिसे हमें बचाकर रखना चाहिए।
जी बिल्कुल, डॉक्टर मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमने बात करी है कैंसर के बारे में, कैंसर से जुड़ी और बीमारियों से जुड़ी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक लाते रहेंगे ताकि आप हमेशा स्वस्थ जीवन जी सकें। फिलहाल दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव।